ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के बारे में। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण एक चीज से बहुत आनंदित होते हैं। तो भगवद गीता देने की कोई अभी आवश्यकता नहीं, वैसे मैं गीता से नहीं बोल रहा हूं। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं, कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवद गीता के जो ये श्लोकाद है दशम अध्याय के, जो गीता का सार कहा जाता है चार श्लोक, उसमें से एक वाक्य है। तो भगवान सबसे अधिक आनंदित होते हैं जब वो अपने भक्तों को उनके बारे में चर्चा करते हुए देखते हैं। ये भगवान का एक भगवान की आशा है, एक्सपेक्टेशन है, भगवान चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं, कथयन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जो जीव है वो सदैव संतुष्ट होना चाहता है, आनंद सुख समृद्धि चाहता है, रमन करना चाहता है किसी चीज में। तो भगवान कहते हैं, भक्तों को आनंद देने वाली चीज, संतुष्टि प्रदान करने वाली चीज वो क्या है? मेरी चर्चा, मेरा नाम रूप गुण लीलाओं का निरंतर चर्चा करना और उनका श्रवण करना, ये वास्तव में भक्तों को सर्वाधिक आनंद देने वाली वस्तु है। इसलिए भगवान कहते कि मेरे भक्त मिलते तो करते क्या है, गप्पे नहीं लगाते, मिलते तो केवल खाते नहीं है आपस में, क्या करते हैं? मिलते हैं, क्योंकि दो भक्त आपस में मिलते हैं तो दोनों एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, वो कौन है? कृष्ण है। तो इसी कारण से हम देखते हैं कि हम जिनसे सर्वाधिक आसक्त हैं, जिनसे अधिक प्रेम रखते हैं, उनके बारे में हमेशा बोलते रहते हैं, उनकी चर्चा करते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त केवल मेरे बारे में ही कथन करते हैं, चर्चा करते हैं जब वो आपस में मिलते हैं। ये देखकर भय सुनकर कृष्ण बहुत आनंदित होते हैं, इतने आनंदित होते हैं कि भगवान अपना धाम छोड़ देते हैं और कहाँ आ जाते हैं? वहां आ जाते हैं जहां भक्त मिलकर क्या कर रहे हैं? उनका गुणगान कर रहे हैं। इसलिए तो नारद मुनि कहते हैं, नारद को कृष्ण कहते हैं, क्या है वो फेमस श्लोक, नाहं तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु, मैं ना वैकुंठ में रहता हूँ ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ मेरे भक्त मेरा गान करते हैं, हम मेरी चर्चा करते हैं नारद, उस स्थान में आकर मैं सदैव निवास करता हूँ। इसलिए भक्तिमय जीवन में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है और वो क्या है? श्रवणा कीर्तना। ये दोनों चीजें यदि नहीं किए तो हम वास्तव में भगवत भक्ति में आनंद अनुभव नहीं कर पाते हैं या कभी भी अपने हृदय की शुद्धि नहीं कर पाएंगे या भगवान के प्रति आसक्ति जागृत नहीं कर पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। हमारे हृदय में भगवत आसक्ति को जगाना है तो व्यक्ति को श्रवण आदि करना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु इलाहाबाद में मिले तो 10 दिन तक रूप गोस्वामी ने दशाश्वमेध घाट पर चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा ली। बल्कि चैतन्य महाप्रभु ने केवल 3-4 बार ही प्रवचन दिए हैं, उन्होंने ज्यादा प्रवचन दिए नहीं, हमेशा कीर्तन करते थे। लेकिन आपने सिलेक्टेड भक्तों को उन्हें शिक्षा दी है, वो जानते हैं कि ये सीखेंगे तो ये सारे जगत को शिक्षा प्रदान करने में सामर्थ्य है। इसलिए सबसे पहले किसको सिखाया महाप्रभु ने? सनातन गोस्वामी को सिखाया, सनातन शिक्षा बहुत फेमस है। फिर रूप गोस्वामी को सिखाया। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी को जो भक्ति की शिक्षा दे रहे थे उसमें चैतन्य महाप्रभु ने कहा यदि बहुत भाग्यशाली व्यक्ति भक्ति का बीज प्राप्त करता है और वो भक्ति की लता अंकुरित होने लगती है, बढ़ती है, और यदि उसको जीवित रखना है और निरंतर ऊपर बढ़ाना है भगवान के चरण कमलों तक, तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? जल देना पड़ेगा उसको, लता को। और वो जल कौन सा है? श्रवण कीर्तन जले करय सेचन। श्रवण कीर्तन के जल से अपने हृदय में जो भक्ति का बीज है उसको हमें सींचना चाहिए। कभी कभी नहीं, कैसे? रेगुलर, नित्य प्रति उसको सींचना चाहिए। हाँ, इसलिए कभी कभी हमें लगता है क्या ये आवश्यक है श्रवण कीर्तन। ठीक है, बहुत रेयरली कभी तो करना चाहिए, नहीं। यदि हम नित्य प्रति करते हैं तो भक्ति में हम क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। फिर इस भौतिक संसार का कोई भी आकर्षण हमें हिला नहीं सकता। हाँ, इसलिए तो हमें कहा गया है नित्यम भागवत सेवया। उससे क्या होता है? भागवत सेवन करने से नैष्ठिकी भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति में क्या आ जाती है? निष्ठा। निष्ठा मीन्स उस व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता भक्तिमय जीवन से। हाँ, ये वैसे ही है कि जैसे एक व्यक्ति था और उसका इतना भक्ति के प्रति रुझान नहीं था, आकर्षण नहीं था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारे दुर्गुण थे। तो उसकी माँ बड़ी भक्त थे, तो माँ ने देखा बेटे के अंदर तो बहुत सारे दुर्गुण हैं, कमियां हैं, वो कैसे ठीक हो जाएंगे। तो उनको लगा कि बस मेरे जो गुरु हैं वो आते रहे घर में, प्रवचन करते रहे, तो उसके प्रभाव से मेरे बेटे पर भी संस्कार हो सकते हैं। तो फिर वो साधु आते थे थोड़ा प्रवचन करके निकल जाते थे। तो वो बेटा प्रश्न पूछता था, हाँ, तो प्रश्न पूछता था कि कैसे ये जो कमियां है, मेरे दुर्गुण है, उससे कैसे मुक्त हुआ जाए। तो वो साधु बोलता नहीं था। साधु ने क्या किया, पहली बार एक खेल ली, ऐसे ठोक दी हल्की, हाथों ने से मारा, चले गए। फिर दूसरे दिन जब आए, इसने सेम प्रश्न पूछा, हाँ, क्या करना चाहिए मुझे इन दुर्गुणों से दूर होने के लिए। तो साधु कुछ नहीं उत्तर देते थे, वो हथौड़ा उठाते थे जो खेल लगी हुई है उसे फिर से ठोक करके चले जाते थे। अभी इसको लगा कि ये क्या है। एक दिन इसने कहा महाराज को समझ में नहीं आ रहा है, हथौड़ा उठाते हो, मारते हो, चले जाते हो। हाँ, उसने कहा
इन दुर्गुणों से मुक्त होने के लिए एक ही उपाय है, नित्य प्रति क्या करो, रोज साधुओं का भक्तों का संग करो, श्रवण कीर्तन करो। ये वैसे ही है जैसे रोज हथौड़ा मारा तो खिड़किया हो गई, अंदर गई अंदर गई अंदर गई और फिक्स हो गए, हाँ फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। वैसे ही सारे दुर्गुण क्या होंगे, भक्तों के संग से चले जाएंगे। नित्य प्रति जब हम संग करते हैं तो वैसे ही है, जब हम रोज श्रवण कीर्तन करते हैं गंभीरता से तो हम शुद्ध हो जाते हैं और भक्तिमय जीवन में स्थिर हो जाते हैं। इसलिए भगवान की ये बहुत बड़ी दया है, भगवान को इस जगत में आने का कोई प्रमुख कारण नहीं है, एक ही कारण है। शास्त्र कहते हैं हमें तो पता है, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, जब धर्म की ग्लानी होती है तो भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा क्या है, भगवान कहते हैं मैं आता हूं केवल सारे जगत के जीवों को श्रवण की सुविधा प्रदान करने के लिए, श्रवण और कीर्तन की सुविधा प्रदान करने के लिए। कैसे भगवान आते तो इतने सारे लीलाएं करते हैं, इतने सारे कार्य करते हैं और इतने सारे लीला और चर्चा देते हैं कि भक्तगण उसी को सुनते हैं, उसी को दोहराते हैं और अपने जीवन को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। इसलिए भक्तिमय जीवन का ये सार सर्वस्व है। क्या है ये सार है? इसलिए जब हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रह्लाद से पूछा कि हे बेटा, इतने लंबे समय तक आप गुरुकुल में पढ़े हो और आज घर वापस आए हो, तो मुझे बताओ सबसे उत्तम चीज आपने आपके गुरु से क्या सीखी। अभी आपको कोई पूछे इतने सालों से आप यहाँ आते हो कम्युनिटी सेंटर में, इतने सालों से सबसे अच्छी चीज क्या सीखी यहाँ, क्या कहेंगे हम? तिलक लगाना सीखा, जप करना सीखा, कीर्तन करना सीखा, है ना, हर एक का अलग अलग है। तो प्रह्लाद महाराज कहते हैं, बल्कि प्रह्लाद के दो प्रकार के गुरु थे, एक तो पक्के नास्तिक थे, कौन थे, शरण और अमर, और दूसरे कौन थे, नारद मुनि। बल्कि नारद मुनि से प्रह्लाद ने शिक्षा कब प्राप्त की थी, घर के अंदर, मतलब भक्ति करने के लिए इस संसार में कोई भी बाधा नहीं है। सबसे बड़ी बाधा है तो कौन है, हम, हमारी भौतिक भोग करने की इच्छा। भक्ति में हम कहते कि नहीं उसके कारण मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम की जड़ तो हम खुद ही है, हमें नहीं करना चाहते। तो यहां जब उनके पिता ने पूछा कि बेटा सबसे उत्तम चीज क्या सीखी, तो वो कहते, प्रह्लाद महाराज कहते, प्रह्लादानुच्यताम तात स्वधितम किंचित उत्तमम। तो हिरण्यकश्यप कहते कि उत्तम चीज क्या सीखी, तो वो कहते हैं मैंने अपने गुरु से सीखा है। कौन से गुरु? नारदा, वो दूसरे से नहीं, वैसे ही है। हम सब स्कूल में हैं, कुछ लोग तो उनके गुरु स्कूल वाले भी हैं और यहाँ भक्त भी है। तो कोई पूछे बेटा क्या सीखा, तो कहा की शिक्षा बताना है किसी को, जो भक्तों से जो सीखा वो बताना चाहिए, स्कूल से यहाँ से वहां से जो सीखा वो नहीं, हाँ वो डुबाने वाली शिक्षा है, उत्तम नहीं है, अधम है। तो इन्होंने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाशम सख्यम आत्मनिवेदनम। कहते कि ये जो नौ प्रकार की भक्ति है, इन नौ प्रकार से जो भगवान की सेवा करता है वो सबसे विद्वान और उत्तम व्यक्ति है। हाँ ये चीज मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु नारद से सीखा है। हाँ तो यहाँ प्रह्लाद भी हाँ कहते हैं, इसलिए कलियुग में बाकी जो नौ है उनमें से दो सबसे प्रमुख है, कलियुग में ज्यादा इफेक्टिव है, वो कौन से है, श्रवण करना कीर्तन करना। और ये श्रवण कीर्तन हम किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। हाँ प्रह्लाद महाराज माँ के गर्भ के अंदर रह के किया उन्होंने, अभी हम कहते घर में नहीं होता श्रवण कीर्तन, आपको बोला नहीं कि माँ के पेट में जाओ और वहां करो श्रवण कीर्तन, ऐसे कहा कि किसी को नहीं, यहाँ तो हम घर में रहते हुए नहीं हमसे होता, प्रहलाद अपने माँ के घर में तभी भी क्या कर रहे थे, प्रवचन सुन रहे थे। हाँ, उनकी माँ कयादु को जब देवतागण आए ले जाने के लिए कि इसके बच्चे को मार डालेंगे हम, तो नारद ने रोका, अरे रुको, इसको नहीं ले जा सकते, इसके पेट में एक महाभागवत जन्म लेगा। अरे आसुर का बेटा महाभागवत कैसे हो सकता है, जैसा बाप तैसे वैसे बेटा है। लेकिन जब नारद जानते थे कि इनके घर में महान भक्त है, तो नारद कयादु को अपने आश्रम में ले गए और वो कयादु सेवा करते थे वहां आश्रम में, और पेट में वो बालक था। आज की स्त्रियां गर्भवती होती है तो टेलीविजन देखती है ना, सबसे ज्यादा कुछ को किसी को देखती है तो किसको देखती है, टेलीविजन को देखती है। सबसे ज्यादा कुछ सुनती है तो वो फिल्मी गाने सुनती है, वो बच्चा भी क्या करता है वही सुनता है अंदर, बाहर आके वो नाचने लगता है, रॉक स्टार। हाँ, तो ये कलियुगा है। वहां नारद जी जब भागवत का वर्णन करते थे तो तब प्रहलाद महाराज माँ के घर में भागवत सुना करते थे, श्रीमद भागवत। इसलिए तो प्रहलाद महाराज को बोला गया है भागवत प्रधान। क्या बोला गया है, भागवतों में प्रधान, गांव का प्रधान होता है ना, वैसे ही भक्तों में, भागवत मीन्स डिवोटी, तो भक्तों में जो श्रेष्ठ है, महान है, वो प्रहलाद है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज भी महान भक्त बन जाते हैं, केवल भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करते हुए। इतना कीर्तन किया उन्होंने, इतना कीर्तन, पिताजी क्या करते थे, उनको कीर्तन कर रहा है, चलो इसको आग में खड़ा कर देता हूँ, हाँ उबलते हुए तेल में डालता हूँ। हाँ, अभी हम कीर्तन करते थे इतना कष्ट देते है कोई हमें, थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब करे तो हम रोक देते हैं कीर्तन। हाँ, वहां प्रहलाद महाराज के ऊपर तो कितनी विपदा थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा शरीर त्यागने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने जीवा से कृष्ण का नाम कभी भी बंद नहीं करूंगा। ये है भगवान के नाम के प्रति आसक्ति। आसक्ति या प्रेम का मतलब यह है कि व्यक्ति के ऊपर कितनी बाधाएं आ जाए तभी वो अपने वो प्रेमी को नहीं छोड़ना चाहता। तो यहां प्रेमी कौन है, हमारे कृष्ण है। अभी डायरेक्ट कृष्ण तो हमारे हाथ में नहीं आते, लेकिन कृष्ण का क्या है, नाम है। हाँ, इसलिए हरिदास ठाकुर कहते हैं, खंड खंड होय देह जाओ मोर प्राण तबु तना आमी वदने छाड़ी हरि नाम। जब उनको 22 बाजारों में जल्लादों के द्वारा मारा जा रहा था, तब हरिदास ठाकुर कहते हैं कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए फिर भी मैं तैयार हूं स्वीकार करने के लिए, लेकिन ये कृष्ण का जो नाम है ना, उसको कभी भी अपने जीवन से छोड़ूंगा नहीं। वही हमें व्रत हमें करना लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो सबसे पहले हम भक्तों से दूर निकलते हैं, सबसे पहले जप माला देखते हैं। बुखार हो गया है, 2 दिन जप माला को हाथ नहीं लगाऊंगा, हम तो बहाना ढूंढते हैं कब बीमार हो जाएंगे, तो क्या जप नहीं करना पड़ेगा, है ना। दुख आते हैं तो सबसे पहले हम किसको साइड में करते हैं, जप माला को, जप नहीं करना है, बाकी सब चीजें करते रहते हैं। जप को साइड को करना मीन्स आपने किसको साइड में कर दिया, कृष्ण को, तो कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होंगे। हाँ, इसलिए प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर अपने जीवन से ये सिखाते हैं कि जो भी स्थिति हो हमारे जीवन में, लेकिन हमें कभी भी भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला को श्रवण करना, उनका गुणगान करना कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा हमारी शुद्धि हो सकती है, इसी के द्वारा ही हमारे हृदय में क्या हो सकती है, दिव्य आसक्ति जागृत हो सकती है। तो ऐसे भगवान ने हमें श्रवण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए एक विशेष अवतार लिया है कलियुग में, और वो कौन सा अवतार है, श्रीमद् भागवतम। कौन सा है, श्रीमद् भागवतम। हाँ, भगवान जब ये जगत को छोड़कर चले गए तो उस समय धर्म ज्ञान आदि भी सहा, भगवान अपने साथ में धर्म ज्ञान आदि को लेके चले गए। तो इस युगा में कलयुग शुरू हुआ था तो सब जगह अंधकार फैला था, अज्ञान का अंधकार, इतना अज्ञान का अंधकार कि जिसको हम गाते हैं ना सबसे पहले ओम अज्ञान तिमिरांधस, वो जो तिमिर शब्द लगा हुआ है, तिमिर का मतलब है बहुत ही गहरा अंधकार। वो अंधकार शब्द भी यूज किया है लेकिन उससे आगे क्या बोला है, तिमिरांधस, बहुत ही गहरा घन अंधकार है। हाँ, तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने आप को द्वापर युग में जब निकल जाते हैं जगत से, तो कलियुगा में अपने आप को शब्द अवतार के रूप में छोड़ते हैं या एक ग्रंथ के रूप में अपने आप को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, और वो है श्रीमद् भागवतम। इसलिए कहते हैं कृष्णे सुधाम पगते धर्म ज्ञानादिभि सह नष्ट कलो दृशामेशो पुरानो अर्को अधुनो उदितो, कि भगवान जब चले गए तो कृष्ण सूर्य के समान ही जगत में आ गए भागवत के रूप में। तो यदि कोई व्यक्ति भागवतम को पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करता है, श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से सुनता है, वो क्या करता है, वास्तव में कृष्ण का संग करता है। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, अमेरिका जाने से पहले कौन सा ग्रंथ साथ में ले गए थे, श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद ने अपना घर आदि छोड़ा, वृंदावन में आकर राधा दामोदर मंदिर में रहने लगे और श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते थे, दिल्ली आकर उसकी छपाई करते थे। जब उनके पास भागवतम का पहला स्कंद तैयार हो गया तो प्रभुपाद ने कहा कि अभी मैं अमेरिका जाने के लिए तैयार हूं बस। तो प्रभुपाद कृष्ण को अपने साथ लेके जाते हैं, हाँ, कौन से विग्रह के रूप में, श्रीमद् भागवतम के रूप में, और दूसरा हाँ हरि नाम के रूप में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, इसलिए श्रीमद् भागवतम में वर्णन आया है इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम, कि ये जो ग्रंथ है ये बाकी पुराणों के समान नहीं है, ये वास्तव में साक्षात कृष्ण है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को हमें बहुत हल्का नहीं लेना चाहिए, श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन का लाइफ एंड सोल जिसको कहते वो बन जाना चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए, भागवतम का अध्ययन करने के लिए बहाना बना दिया राजा को। क्या बहाना बनाया, कि मैं बीमार हूं एक महीने के लिए, और भक्तों के बीच में बैठकर क्या करते थे, भागवतम को सुनते थे, पढ़ते थे, चर्चा करते थे। और जब राजा आया देखने, अरे ये तो बोला मैं बीमार हूं, लेकिन बीमार है तो क्या कर रहा है, बीमार बहाना बनाकर भागवतम का श्रवण कर रहा है। और हम भागवतम या भागवतम क्लास में न जाने के लिए क्या बहाना बनाते हैं, हम बीमार है, वो ऑफिस जाने के लिए बहाना बना रहे थे सनातन गोस्वामी। तो ऐसी आसक्ति सनातन गोस्वामी की थी। तो ऐसे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे श्रीमद् भागवतम, एक प्रार्थना में वो कहते हैं कि आप ही एक मेरे मित्र हो, आप ही एक में मेरे गुरु हो, आप ही एक मित्र में एकमात्र मेरे संगी हो। हाँ, तो ऐसे सनातन गोस्वामी जो छह गोस्वामी में से एक है, वो भी श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के लिए या समझने के लिए, चर्चा करने के लिए भगवान से याचना करते थे, और बाकी गोस्वामियों के बीच में आपस में मिलकर श्रीमद् भागवतम को सुनते थे या श्रीमद् भागवतम की चर्चा करते थे। तो श्रीमद् भागवतम अपने आप में सामर्थ्यवान है एक व्यक्ति को कृष्ण प्रदान करने के लिए, क्या प्रदान करने के लिए, कृष्ण। इसलिए कहते हैं कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, कि श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है कि व्यक्ति को कृष्ण प्राप्ति सरलता से करवा सकता है। हाँ, लेकिन उसके लिए भागवतम के प्रति क्या चाहिए, श्रवण करने की निष्ठा होनी चाहिए। आप सोचो जो इस विश्व के जो राजा है परीक्षित, उनके ऊपर इतना बड़ा महान संकट आया था, उनकी कोई गलती नहीं थी खास, और उनको शाप दिया गया कि आपकी मृत्यु होने वाली है। हाँ, लेकिन वो परीक्षित महाराज भयभीत नहीं हुए। हम मृत्यु का नाम सुनते क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हाँ, और वे तो हम मोह में रहते हैं, हमें लगता है कि बाकी इस हॉल में जितने हैं वो सब मरने वाले हैं, मुझे अकेले को छोड़कर। हाँ, कई बार जो प्रवचन देने वाला होता है वो मृत्यु के बारे में इतना बोलता रहता है, वो भूल जाता है कि वो भी मरने वाला है। उसको लगता है वो बाकी मृत्यु दूसरों के लिए है। हाँ, ये वैसी स्थिति है जैसे प्रभुपाद कहते थे कि जो बकरी है, हाँ, तीन बकरियां ऐसी लाइन में खड़ी होती है, कसाई एक को उठाता है, काट के ऐसे लटकाता है, और दो बकरियां हरी हरी घास खाती रहती है, उधर भी देखती रहती है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता अगला नंबर किसका आने वाला है। हाँ, मैं इधर उसकी जगह लेने वाली हूँ। हाँ, तो वैसी हमारी स्थिति है। इसलिए हाँ, परीक्षित महाराज के लिए केवल भागवतम नहीं है, हमें लगता है वो परीक्षित महाराज को मृत्यु आ रही थी ना, उनके लिए भागवत श्रवण करना महत्वपूर्ण है, भगवान के बारे में सुनना महत्वपूर्ण है, मेरे लिए नहीं। लेकिन परीक्षित महाराज के बारे में श्रील प्रभुपाद प्रवचन में कहते हैं कि परीक्षित महाराज बहुत अधिक सौभाग्यशाली थे। क्या सौभाग्य था उनका कि मृत्यु से पहले उन्होंने भागवतम श्रवण करा किया, और उनको ये निश्चित पता था कि मेरे पास कितने दिन बचे हैं, 7। प्रवचन में प्रभुपाद कहते कि लेकिन हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हमें ये निश्चित रूप से पता नहीं है कि मेरे पास 7 दिन है या नहीं है। हाँ, मैंने पहले भी बताया होगा, मैं कुछ 2 साल पहले तिरुपति में था, तो एक माता जी आई थी वहां, वो अभी विदेश में रहते, तो वो बता रहे थे कि कैसे उनके पति की मृत्यु हुई थी। वो लोग ऐसे तीर्थ यात्रा करने गए हैं, हाँ, किसी एक जगह, और वहां से वापस आ रहे थे, तो कार में भोजन करने का बड़ा बहुत सारा सामान था, तो वो लेकर उन सबने कहा कि बच्चे भी थे, वो माता जी भी थे, उनके पति, सबने कहा कि चलो अब ये पेड़ आ रहा है आगे, उसके नीचे हम भोजन करेंगे। तो ये सब लोग गाड़ी उस पेड़ के नीचे रोक दी, सब भोजन करने का सारा सामान निकाला, चटाई निकाला, बैठ गए, और उस पेड़ के पीछे ही एक थोड़ा सा ऐसे जलाशय था, पानी का सरोवर था। इस पति ने कहा अभी तो मैं, हम प्रसाद पाएंगे, भोजन करेंगे, उससे पहले मैं क्या करके आता हूँ, स्नान करके आता हूँ। बल्कि सब लोग इतनी योजनाएं बना रहे थे कि हम अभी खाएंगे, जाएंगे घर, ये करेंगे, वो करेंगे, दूसरे दिन उधर जाएंगे, लेकिन इसने कहा मैं बस स्नान करने के लिए जाता हूँ, स्नान करता हूँ, फिर आऊंगा, फिर हम भोजन करेंगे। तो गया स्नान करने वहां, और जैसे उसने जंप मारी तो उसके अंदर दलदल थी, और वो क्या हो गया, उसमें फंस गया, और इतना अंदर चला गया था वहां कि यहाँ आसपास कोई नहीं, वीरान सा स्थान था, पत्नी और एक बच्चा था बस। और अभी उसने, वो उस लेडी ने सोचा क्या करूं क्या करूं, बहुत मुश्किल था, बचा भी नहीं सकती थी, और वो चिल्ला रही है कोई भी नहीं आ रहा है। उसने अपनी साड़ी खोली और वो डाली, बहुत अंदर था, तभी भी वो पकड़ नहीं पाया, उनके सामने उनकी पति की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वैसे ही हमें भी निश्चित रूप से पता नहीं है कि हम कब तक इस संसार में, इस जगत में हैं। हाँ, काल क्या कर सकता है, कभी भी हमें दबोच सकता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि काल के पहले ही अपनी तैयारी करता है, भगवान की भक्ति करने का, भगवान के बारे में श्रवण करने का, भगवान के बारे में कीर्तन करने की तैयारी करता है। तो ऐसे परीक्षित महाराज के ऊपर जब ये विपदा आई तो परीक्षित महाराज टेंशन में नहीं आए, परीक्षित महाराज बिल्कुल शांत थे। क्यों शांत थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही भगवान के भक्ति की थी। परीक्षित महाराज कृष्ण बलराम की गुड़ियों से खेलते थे, छोटे छोटे विग्रह से उनको भोग लगाते थे। जब वो बड़े हुए, राजा भी हुए और उनके जीवन में इतनी बड़ी विपदा आई तो विचलित नहीं हुए, वो तुरंत ये विचार आया कि ये तो किसकी कृपा हुई है मेरे ऊपर, किसकी, कृष्ण की। प्रभुपाद एक बार कोलकाता में थे तो बम गिर रहे थे, हाँ, जब युद्ध हो रहा था, सेकंड या कोई वर्ल्ड वार हो था, कौन सा था, सेकंड वर्ल्ड वार, तो उस समय प्रभुपाद सारे लोगों को कलकत्ता छोड़ के यहाँ वहां जा रहे थे कि बचना है वहां ना बॉम्ब से, प्रभुपाद उधर ही रहे,
प्रभुपाद कहते बॉम्ब आए या जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, बॉम्ब आ रहा है तो वो साक्षात कौन आ रहा है, कृष्ण आ रहा है, कृष्ण की कृपा है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज को जब ये पता चला तो उन्होंने सोचा ये भगवान की विशेष विशेष कृपा है। उन्होंने राजा अपने पुत्र जनमेजय को राजा बनाया और तुरंत ही क्या हो गए, वो निकल पड़े, निकल पड़े तो वो गंगा के किनारे गए। अभी व्यक्ति के जीवन में कष्ट आता है तो कहाँ जाता है, बियर बार में, बियर बार पीने निकलता है, टेंशन भूलने के लिए शराब शराब खाने में जाता है। क्या कहते शराब खाना, क्या शब्द है, ठेका। मैं जब दिल्ली में नया आया था 1999-2000 में, तो गुड़गांव जा रहा था प्रवचन देने ऐसे, तो मुझे पता नहीं था कि जब गुड़गांव जा रहा था तो एक जगह जाते जाते देखा बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है। तो हमने वो टैक्सी हायर किया था प्रवचन देने के लिए, तो वो ड्राइवर को मैंने पूछा, अरे ड्राइवर ये इतना लंबा लाइन किस चीज के लिए, पहली बार देख रहा हूं मैं। वो कहते हैं वो शराब पीने के लिए। और जैसे जैसे गाड़ी हमारा आगे जा रहा था वो आगे लिखा था देशी दारू का ठेका ऐसे बड़ा, तो मैं तो हैरान हो गया, कभी मैंने ये ऐसे देखा नहीं था कि शराब पीने के लिए भी क्या होती है, लंबी लाइन लगती है। हाँ, तो जब व्यक्ति के जीवन में बहुत टेंशन आता है, दिक्कतें होती है, समस्या, तो उसको भूलने के लिए क्या करता है, शराब का सहारा लेता है। हाँ, तो वैसे परीक्षित महाराज ने किसका सहारा लिया, गंगा का, किसका, गंगा। प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि गंगा के किनारे जाना या यमुना के किनारे जाना, उससे क्या होता है, कृष्ण का स्मरण करना हमारे लिए सरल हो जाता है। इसलिए अनुकूल वातावरण हमें चूज करना चाहिए, भक्ति करने के लिए भी, भगवान का स्मरण करने के लिए भी। तो वो गंगा के किनारे इसलिए भी गए क्योंकि गंगा भगवान की प्रतिनिधि है और दूसरा भगवान के चरणों से निकला हुआ जल है। अभी हम चरणामृत के लिए फाइट करते रहते हैं, गंगा अपने आप में पूरा चरणामृत का नदी बह रहा है, जाओ उसका पान करते रहो। तो ऐसे परीक्षित महाराज गए वहां, और जब ये राजा वहां पहुंचा तो सारे विश्व के ऋषि मुनि सब जगह से आए। हाँ, क्यों, उनको आशीर्वाद देने के लिए और वो देखने के लिए कि ये परीक्षित महाराज करता क्या है। तो जब इतने सारे राजा महर्षि मुनियों को जब देखा, परीक्षित महाराज अत्यधिक आनंदित हुए और परीक्षित महाराज उनके चरणों में जाते हैं और उनसे एक याचना करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। इन सारे भक्तों को क्या प्रार्थना की होगी मृत्यु के समय, उन्होंने एक तो एक चीज उन्होंने ये पूछी कि आप सारे दुनिया भर के अलग अलग कोनों से आप आए हो यहाँ, हाँ मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है, ऐसा सौभाग्य किसी राजा का भी नहीं है। क्योंकि आप सोचो वो व्यक्ति सबसे अधिक भाग्यशाली है जिसके मृत्यु के समय उसके आसपास कौन है, भक्त लोग हैं, है कि नहीं। चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, संपदा हो, हजारों कॉन्टैक्ट्स हो, बहुत सारी चीजें हो, हाँ तो वो ज्यादा मायने नहीं रखती, मृत्यु के समय वो सारी चीजें हमसे छीनी जाएगी। लेकिन हमारा जीवन धन्य या सफल है वो कैसे समझा जाएगा यदि मृत्यु के समय हमारे पास कौन है, वैष्णव गण है जो भगवान का स्मरण करा सकते हैं। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि संसार में बहुत सारे राजा हुए लेकिन उन राजाओं में मैं बहुत भाग्यवान हूं कि आप जैसे महान भक्त मुझ पर अनुग्रह करने के लिए मेरे निकट आए हो। तो उनसे वो एक प्रार्थना करते हैं, वो कहते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि मैं मरने वाला हूं तो ऐसे मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कुछ उपाय आप बताओ। और दूसरी चीज कहते हैं कि शायद ये कृष्ण की योजना थी, कृष्ण जानते थे कि मैं अपने गृहस्थ जीवन में बहुत आसक्त हूं। कौन सोच रहे हैं, परीक्षित महाराज, ये उनकी विनम्रता है। परीक्षित महाराज सोच रहे थे कि भगवान मुझे अपने निकट जल्दी बुलाना चाह रहे थे इस भावना से कि मैं गृहस्थ जीवन से इतना आसक्त हूं, अपने बच्चे पत्नी धन संपदा, जिससे मुझे जल्दी मुक्त कराने के लिए, मेरे हृदय में वैराग्य लाने के लिए
भगवान ने ये योजना बनाई है ये शाप देकर, तो ऐसा वो सोच रहे थे और वो सारे ऋषियों को प्रार्थना करते, ब्राह्मणों को वो एक प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि मैं आप सबसे ये निवेदन या प्रार्थना करता हूं कि यदि मुझे फिर से जन्म मिले जगत में, हाँ, तो वो उसमें मुझे तीन चीजें चाहिए। क्या चीजें चाहिए मुझे, कितनी चीजें चाहिए? हाँ, तीन चीजें कहते वो मुझे प्राप्त होनी चाहिए यदि मुझे फिर से जन्म मिले। पहली चीज वो कहते हैं कि मुझे फिर से जन्म मिले तो पहली चीज ये चाहिए कि मेरे हृदय में कृष्ण के लिए बहुत गहरी आसक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गहरी आसक्ति, मतलब भगवान के लिए सबसे अधिक प्रेम। सुख उस पर निर्भर करता है कि आपने अपना हृदय कितनी मात्रा में कृष्ण को दिया है। इस संसार में हम अपना हृदय किसी को भी दे दें, हाँ, एक स्त्री पुरुष को देती है, पुरुष स्त्री को देता है, हम अपने कार को देते हैं, कुत्ते को देते हैं, बिल्ली को देते हैं, हाँ, कितने लोगों को हृदय बांटते रहते हैं, लेकिन कभी भी सुख या संतुष्टि अनुभव नहीं होती। हाँ, लेकिन जब हम कृष्ण को ये हृदय अर्पित करते हैं तो हम पूर्ण रूपेण सुख या आनंद की अनुभूति करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि पहली चीज, हे भक्तों, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए। और दूसरी चीज मैं चाहता हूं, आप अगला जन्म मुझे प्राप्त हो भी गया तो मैं ये चाहता हूं कि हे कृष्ण, कृष्ण के जो भक्त हैं उनका मुझे क्या मिलना चाहिए? संग लाभ होना चाहिए। यही तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, तांदेरा चरण सेवी भक्त सनेवास जनमे जनमे है यही अभिलाष। मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे जन्म जन्म में भक्तों का संग मिले, क्योंकि भक्तों के संगति में क्या है? सब सिद्धि है, भगवान का स्मरण है, भगवत सेवा है, भगवत कथा है, हाँ, सब कुछ है। और तीसरी चीज परीक्षित उनसे मांगते हैं, वो कहते हैं मुझे तीसरी चीज ये प्रदान करो कि जितने भी जीव हैं उनके प्रति मैत्री का भाव, हाँ, मित्रता का भाव उनके प्रति होना चाहिए। मेरे हृदय में किसी भी व्यक्ति के लिए ईर्ष्या द्वेष आदि की भावना नहीं होनी चाहिए। ये वास्तव में भक्त का हृदय है। भक्त इसलिए अजात शत्रु कहलाता है युधिष्ठिर महाराज, कि भक्त इतना निर्मल हृदय का होता है कि वो अपने किसी को शत्रु मानता नहीं है, चाहे कोई उसको शत्रु माने वो अलग बात है, वो किसी से ईर्ष्या या द्वेष आदि नहीं करता है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज उनसे ये चीज मांगते हैं और वो कहते हैं कि मैं अभी आमरण, हाँ, उपवास करके यहाँ गंगा के किनारे बैठना चाहता हूं। तो जैसे ही ये सब बोल के वो बैठ गए तो सारे जो ऋषि मुनि थे वहां वो सब लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। वो कहने लगे कि वास्तव में एक व्यक्ति का जीवन ये महाराज परीक्षित के समान होना चाहिए। तो ऐसे परीक्षित महाराज जब वहां बैठे ये सब बोल के और वो सोचने लगे कि वास्तव में कृष्ण की फिर उन्होंने दूसरी कृपा देखी अपने जीवन में। इसलिए हम भगवान के नजदीकता अनुभव करते हैं जब हम देखते हैं अपने जीवन में किसका हाथ? कृष्ण का हाथ। और हर छोटी छोटी चीज में प्रतिदिन हमें अपने जीवन में कृष्ण का हाथ देखना चाहिए। सुबह जैसे आंख खोलते हैं तो सोचना चाहिए कि किसकी कृपा है जिनके कारण मेरी आंख खुली है आज? कृष्ण की। रानी विक्टोरिया, लंदन की रानी, जब सोई और सुबह उनकी सेविकाएं उठाने गए तो उसकी आंखें क्या हो गई थी? हमेशा के लिए बंद थी। लेकिन हमें कितना कन्विक्शन है कि मैं आज सोने जा रहा हूं या जा रही हूं, सुबह में अपने आप ही उठूंगी या उठूंगा। हाँ, वहां विक्टोरिया मरी हुई मिली उनके बेड में। हाँ, तो यहां हम रोज ऐसा जब भगवान को अपने जीवन में देखेंगे तो हमें क्या होगा? नित्य रूप से कृष्ण का स्मरण होगा। और इसी को क्या कहा गया है? कीर्तनीय सदाहरि। कीर्तनीय सदाहरि का मतलब नहीं है कि जब हारमोनियम और मृदंग करता लोगा तभी कीर्तन करूंगा मैं, नहीं, वो 24 घंटे भगवान का स्मरण करता है, भगवान को देखता है। इसलिए तो भगवान ने गीता के 11वें अध्याय में शायद और 7वें में भी बोला है कि उनकी विभूति का वर्णन किया है भगवान ने कि मुझे देखो रसम अप सुखमते या जब पानी पीते हो तो पानी का स्वाद क्या है, मैं हूं। आद्य गंध पृथ्वीअंश, पृथ्वी का जो शुरुआत का गंध है, जब जल आता है वर्षा होती है तो पृथ्वी से सुगंध निकलती है ना, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने इतनी इतनी चीजें बोली है। भगवान कहते हैं सूर्य क्या है, मेरा आंख है। हाँ, जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद एक बार समंदर के किनारे सुबह सुबह वॉक कर रहे थे तो वहां समंदर के तट में बड़े सारे पत्थर थे बड़े बड़े, और वो लहरें आती थी उसमें लग जाती थी जोर से। तो प्रभुपाद कहते देखो ये जो आवाज है इन पत्थरों से लहरें टकराती हैं, ये आवाज गोपियों के हृदय की धड़कन है। किसकी धड़कन है, गोपियों के हृदय की, कि वो कृष्ण के विरह का अनुभव कर रही है। अब सोचो इतने महान भक्त कहाँ देख रहे हैं, ब्रज को देख रहे हैं, वहां किसी प्रशांत महासागर के तट पर होंगे अमेरिका में, लेकिन कहा उनका मन कहा है, वृंदावन है, कृष्ण की ओर है। तो इस प्रकार से कीर्तनीय सदा हरि का मतलब है कि प्रतिदिन प्रतिक्षण हम अपने जीवन में कृष्ण का हाथ देके या कृष्ण का स्मरण करने का प्रयास करें। तो परीक्षित महाराज ने पहली कृपा ये देखी अपने जीवन में कि मुझे शाप देकर मेरे हृदय में वैराग्य ला दिया, और अभी दूसरी कृपा भगवान की देखते हो, क्या देखते हैं, जब ये सब बोला उन्होंने और वो बैठ गए अपने मृत्यु के लिए, तो देखा कि एक महान साधु आ रहे हैं विचरण करते हुए। कौन थे वो महान साधु, शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी आ रहे थे, जिनके आसपास बच्चे और स्त्रियां उनको पत्थर मार रहे थे, वो आ रहे थे नग्न अवस्था में थे। हाँ, वो आए, जैसे ही सामने आए परीक्षित महाराज जितने भी हजारों ऋषि मुनि थे सब खड़े हो गए, खड़े होकर उनको प्रणाम किया, और सारे लोग सोच समझ गए कि ये सर्वसाधारण साधु नहीं है, ये शुकदेव गोस्वामी है, और आसन दे दिया उनको कि आइए और आप बैठ जाइए। और जब उनको बिठा दिया तो परीक्षित महाराज को किसका स्मरण हो गया, कृष्ण का। परीक्षित महाराज ने सोचा अरे मैं तो इतना नीच हूं, घृणित हूं, मुझमें कोई योग्यता नहीं है, एक ही योग्यता मेरे अंदर है कि मैं किसके वंश में जन्म लिया हूं, पांडवों के, क्योंकि भगवान किन से प्रेम करते हैं, पांडवों से। इतना प्रेम भगवान ने पांडवों से किया है, किसी और से नहीं किया। और कुंती महारानी भगवान को बहुत अधिक प्रिय थी, द्रौपदी अर्जुन ये सब, बल्कि उनके जीवन में इतनी विपदाएं आई, इतने कष्ट आए। वास्तव में व्यक्ति को सबसे अधिक कष्ट किसी से मिलते हैं तो वो अपने लोगों से मिलते हैं। किससे, अपने लोगों से। कुंती को किसने कष्ट दिया सबसे ज्यादा, अपने लोग थे पांडवों को। तो यहां वो कहते हैं, सोचते हैं कि मुझमें कोई योग्यता नहीं है, लेकिन मेरी एक ही छोटी सी योग्यता है कि मेरा संबंध किन से है, पांडवों से है। हाँ, मेरे पितामह हैं जिनके कारण ने भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, और क्या कृपा की, मैं मरने वाला हूं तो मेरे लिए एक महान वैष्णव अरेंज किया, और वो कौन थे, शुकदेव गोस्वामी। उन्होंने सोचा परीक्षित महाराज ने, ये शुकदेव गोस्वामी अचानक नहीं आ सकते, हाँ इनके हृदय में भगवान ने उनको प्रेरित किया है, और मेरे पास केवल 7 दिन बचे हैं जिनके लिए शुकदेव गोस्वामी आए हैं। जैसे शुकदेव गोस्वामी उनके सामने आए, परीक्षित महाराज ने उनको प्रणाम किया, बैठने के लिए आसन दिया, और वो बोलने लगे। उन्होंने कहा शुकदेव गोस्वामी या परीक्षित महाराज कहने लगे कि वास्तव में आप जैसे महान जो व्यक्ति है वो ऐसे ही इस जगत में भ्रमण नहीं करते बिना किसी काम के। आप जैसे महान साधु भ्रमण करते हैं केवल दूसरों के कल्याण के लिए। जैसे प्रभुपाद को, प्रभुपाद अपने लिए अमेरिका नहीं गए थे, इसलिए भगवान के भक्तों को देवताओं से श्रेष्ठ माना गया है। क्यों माना गया है देवताओं से श्रेष्ठ, क्योंकि देवता हमेशा कोई उनकी पूजा करता है तो उससे कुछ चाहते हैं। हाँ, हमेशा क्या चाहते हैं देवता, कुछ ना कुछ चाहते। जैसे इंद्र था, इंद्र पूजा नहीं, अभी इतने साल इंद्र की पूजा ब्रजवासियों ने की, लेकिन एक साल नहीं की तो इंद्र को गुस्सा आ गया। हाँ, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ देवतागण चाहते हैं उसके बदले में, वो कुछ देते हैं उसके बदले में चाहते हैं। लेकिन भगवान के भक्त उनको कोई दुख भी देता है तो भी वो उस व्यक्ति का अहित नहीं चाहते। हाँ, उनको इतना मारा गया हरिदास ठाकुर को, तो चैतन्य महाप्रभु तो चक्र लेके आ गए थे वहां। चैतन्य महाप्रभु ने कहा इनको तो मार डालता हूं। हरिदास ठाकुर कहते हैं, प्रार्थना करते कि हे कृष्ण, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या करो, इनको दंडा मत दो, इनके ऊपर कृपा करो। वैसे ही प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज को उनके पिता ने इतना कष्ट दिया, जब भगवान नरसिम्हदेव प्रकट हुए तो नरसिम्हदेव को प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद को नरसिम्हदेव कहते कि मांगो, कुछ मांगना है। वो कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान बहुत फोर्स कर रहे थे। तो एक चीज वो कहते हैं कि आप मेरे पिता में भी बहुत क्या कहेंगे, बहुत आसुर है, भयानक, हाँ, जिसने बहुत लोगों को सबको कष्ट दिया है, लेकिन आप क्या करो, उसका भी उद्धार करो, उसको भी अपने धाम ले जाओ। ऐसी भावना प्रहलाद की थी। इसी कारण से वैष्णव या भगवान के भक्त देवताओं से भी श्रेष्ठ है। इसलिए देवताओं का आश्रय लेने से भी करोड़ों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है जब हम भगवान के महान भक्तों का क्या करते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं। तो ऐसे परीक्षित महाराज प्रार्थना करते थे, कर रहे थे शुकदेव गोस्वामी को, और उन्होंने कहा, परीक्षित महाराज ने कहते कि आपका दर्शन करना ही पवित्र हो जाना है। तुम्हारा दर्शन, आपका दर्शन करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। तो क्या कहा जाए, आप जैसे महान भक्त की थोड़ी सी सेवा करने से, आसन देना, जल प्रदान करना, भोजन करना, ऐसी सेवाएं करेंगे तो कितना अधिक लाभ मिल सकता है। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने शिवदेव गोस्वामी को अप्रोच किया और उन्होंने दो श्लोक बोले परीक्षित महाराज ने। एक चीज उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति मरने के लिए बिल्कुल मृत्यु के निकट है, अतः प्रोच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य च यत् कार्य म्रियमानस्य सर्वथा। म्रियमान का मतलब है जो मृत्यु के नजदीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है। उसमें उन्होंने चार चीजें पूछी, चार चीजें किसके लिए करने चाहिए मरने वाले व्यक्ति को। एक पूछा उन्होंने, यह श्रोतव्य अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नुभि प्रभो स्मर्तव्य भजनीय वा ब्रूहि अथवा विपर्ययः। परीक्षित महाराज ने पूछा पहला कि व्यक्ति को किसके बारे में सुनना चाहिए। सबसे पहले क्या बोला, सुनना, श्रवण 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 सबसे महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। जो व्यक्ति श्रवण करने में आलसी हो गया वो भगवत भक्ति में अग्रसर हो नहीं सकता। इसलिए परीक्षित कहते हैं किसके बारे में सुनना चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न वो पूछते हैं किसके नामों का जप करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, ये भागवत की शुरुआत यहां से होती है, इन चार प्रश्नों से इसी परिश्रीमद भागवतम पूरा खड़ा हो गया है। हाँ, वो कहते कि किसके बारे में सुनना चाहिए या क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, स्मर्तव्य किसका स्मरण करना चाहिए, और चौथा क्या था, किसकी पूजा करनी चाहिए। हाँ, और मतलब ये क्या करना चाहिए, और दूसरा पूछते क्या नहीं करना चाहिए। भक्ति में दोनों आवश्यक है जानना, केवल क्या करना चाहिए वो पता नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। जैसे हमें 16 माला जप करना चाहिए, है ना, हर चार जो अनैतिक कार्य है उनको त्याग देना चाहिए, वो चीजें नहीं करनी चाहिए। तो वैसे ही यहां परीक्षित महाराज ने जब पूछा तो शुकदेव गोस्वामी एक लाइन में उत्तर देते हैं। वो कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च देह पूज्य च नित्यदा। व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सब कुछ, ये चारों चीजें भगवान हरि के लिए करना चाहिए। किसके लिए? हरि। और हरि कौन है? कृष्णा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज अभी निश्चिंत हो गए। वो इतने सिंसियर थे भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान ने उनके लिए वैसा ही वक्ता भेज दिया। वही है, हम धोखा खाना चाहते हैं तो भगवान हमारे लिए किसको भेजेंगे? धोखा देने वाला। हाँ, ये हमारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं जिस प्रकार से आप मेरी भक्ति करते हो उसी रूप में मैं क्या करता हूं, आपसे आदान प्रदान करता हूं। वैसे ही यदि हम धोखा खाना चाहते हैं, हम भक्ति नहीं करना चाहते ठीक से, तो भगवान वैसे ही व्यक्ति की हमारे लिए अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ परीक्षित महाराज सिंसियर थे भगवान के बारे में सुनने के लिए, इसलिए शुकदेव गोस्वामी। और शुकदेव गोस्वामी कौन थे? कौन थे? श्रीमती राधा रानी के तोता थे। जब भगवान द्वापर युग में इस जगत से जाने वाले थे, श्रीमती राधा रानी जब वृंदावन में थे तो उनके एक तोता हुआ करता था। हर ब्रजवासी के घर में तोते होते थे और सारी गोपियां उनको बोलते थे, बोल गोविंद दामो धर माधवे थी। क्या बोलने के लिए बोलते थे? गोविंद दामो धर माधवे थी। सारे तोते बोलते रहते थे गोविंद दामो धर माधवे थी। तो ये राधा रानी, इसलिए भागवतम में जब शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं ना, तो वहां लिखा हुआ है श्री शुक उवाच। क्या लिखा हुआ है? श्री शुक उवाच। श्री का मतलब है श्रीमती राधा रानी, और शुक मीन्स वो तोता जो शुकदेव गोस्वामी है। तो जब राधा कृष्ण इस जगत से अप्रकट होने वाले थे तो वो इस जगत में उन्होंने अपने तोते को छोड़ के गए और उसको सेवा दी। क्या सेवा दी? कि आप क्या करो, निरंतर जो कृष्ण कथा है उसका उच्चारण करो सारे जगत के हित के लिए। अभी ये तोता बेचारा अकेला रह गया, राधा कृष्ण तो चले गए। अभी ये ढूंढ रहा था, फ्रूट नहीं ढूंढ रहा था खाने के लिए। क्या ढूंढ रहा था? क्या ढूंढ रहा था? कृष्ण कथा। क्या ढूंढ रहा था? हमें खाली छोड़ा जाए तो क्या ढूंढेंगे हम? बोलिए, हमें अकेले कोई पता है क्या ढूंढेंगे? वहां शुकदेव गोस्वामी वो जो तोता था वो ढूंढ रहा था कहां कृष्ण कथा है, कहां कृष्ण कथा है, कहां कृष्ण कथा है। तो वो ढूंढते ढूंढते भुवनेश्वर में पहुंचे। कहां पहुंचे? वृंदावन से भुवनेश्वर। भुवनेश्वर का दूसरा नाम है एकाम्र कानन। एकाम्र कानन का मतलब है एक आम का ट्री है, उसके नीचे शिवजी और पार्वती रहते हैं और वहां रह के केवल कृष्ण कथा की चर्चा करते हैं, भागवत श्रवण करते हैं। तो उस दिन शिवजी भागवत के सुपर डुपर वक्ता कौन है? महादेव शंभू है। वो कभी रुकते ही नहीं है। महादेव शंभू इतना बोलते रहते भगवान के बारे में, इतना बोलते रहते हैं कि चार कुमार सारे ऋषि मुनि उनके पास आते सुनने के लिए। और कोई भी नहीं है तो एक श्रोता उनका निश्चित है। कौन है? उनकी पत्नी है। अभी हरेक के पास वही होना चाहिए घर में, वो आम का ट्री घर है हमारा, जो भी जिसके पास है। हाँ, और आप शिवजी की तरह भागवत उठाइए, गीता उठाइए, रोज अपने बच्चों को बिठाइए, पत्नी को बिठाइए और क्या सुनाइए? कृष्ण कथा। हाँ, रोज हो सकता है, नित्यम भागवत सेवया। मैं जानता हूँ हमारे ईस्ट दिल्ली में एक भक्त है, उनके घर में भी ऐसे प्रोग्राम होता है हर मंडे शाम को, तो कभी कभी जाता हूँ। तो वो प्रभु जी माता जी, वो प्रभु जी तो बहुत बिजी रहते हैं ऑफिस में वगैरह, और शाम को आते तो बेचारे बड़े थके होते हैं। लेकिन वो मुझे कहते हैं कि प्रभु जी मुझे ना भगवान ने बहुत अच्छी पत्नी दी है। मैंने कहा क्या अच्छी पत्नी है, उसमें क्या विशेषता है? कहते अच्छाई एक ही है, मैं चाहे जितना भी थका हो कुछ भी हो, शाम को आता हो तो प्रसाद खिलाकर सबसे पहले मुझे भागवत सुनाती है, रोज बिठाती है मुझे सामने और श्रीमद भागवत तो पढ़ के सुनाएगी, तब बाकी आगे। ये रोज कहते एक भी दिन ऐसे नहीं हुआ कि हमने क्या ने श्रवण किया, कृष्ण कथा ने श्रवण की। मैंने कहा बहुत फॉर्चुनेट हुआ,
भगवान की विशेष कृपा है और ऐसी कृपा बहुत कम लोगों के ऊपर होती है। तो यहाँ शिवजी अपनी पत्नी को लेकर अकेले सुनाते रहते हैं, लेकिन उस दिन पार्वती देवी जब सुन रहे थे तो भागवतम का दूसरा स्कंद शुरू हो गया था और दूसरे स्कंद में बड़ा सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत तीसरे स्कंद में दूसरे में, तो पार्वती देवी को तो बड़ा कठिन हो रहा था। प्रवचन में होता है ना कभी कभी सीधा बैठ जाइए आप, जब हमें थोड़ी कठिनाई होती है, नींद आने लगती, थके होते हैं, तो सीधा बैठना चाहिए और गहरी सांस लेनी चाहिए, तो कभी भी आपको नींद हावी नहीं होगी प्रवचन में। तो यहाँ पार्वती देवी सुन रही थी, लेकिन आज उसका मन कुछ लग नहीं रहा था और बहुत थक गई थी, तो वो आंखें लग गई और शिवजी इतने सुनाने में मग्न है कि उन्होंने देखा भी नहीं सामने कि पार्वती देवी की आंखें बंद हो गई। पार्वती देवी बीच में बोला करती थी, हाँ बोलिए आगे, हाँ अभी ये हाँ हाँ बंद हो गया, ये जो तोता है उड़ के आके वो ट्री के ऊपर ऊपर बैठ गया इनके ऊपर आकर, और ये पार्वती देवी तो सो गई थी लेकिन ये तोता आकर कृष्ण कथा सुन रहा था। सुनते सुनते पार्वती की जगह में वो बोलता था हाँ। अभी शिवजी महादेव वैष्णवानाम यथा शंभो, उनको कृष्ण कथा में बाधा पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है उनको? बाधा पसंद नहीं होती उनको। तो ऐसे जो शुकदेव गोस्वामी तोते के रूप में सुन रहे थे और यहाँ जब देखा कि अरे पत्नी सामने तो पूर्ण समाधि में चली गई है, अरे आवाज कहाँ से निकल रही है, देखा ऐसे ऊपर तीन आंख है ना उनके पास, वैसे शिवजी के ओरिजिनली एक मुख नहीं है, कितने हैं? पांच। हाँ, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। महादेव राम नाम का जप करते हैं और पांच मुख, इस पहले एक ही मुख था लेकिन इतना जप करते रहे, इतना जप करते रहे, इतना कृष्ण कथा करने लगे, इतना टेस्ट आ गया कि भगवान से उन्होंने आशीर्वाद मांगा, तो उनसे उनके सीधा पांच मुख हो गए। हाँ, कितने आंखें हो गई फिर? दस। वही ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, शिवजी कैसे इतनी आंखें और इतने मुंह हो गए, राधा रानी ने पूछा था एक बार कृष्ण से, तो अभी उन्होंने देखा ये तो कोई और सुन रहा है, पक्षी सुन रहा है, तो शिवजी को गुस्सा आ गया, त्रिशूल उठाया, उसके पीछे भागे। हाँ, दौड़ पड़े उनके पीछे, अभी वो तोता भाग रहा है, भाग भाग के वो दूसरे परिवार की ओर गया। उस समय बद्रिक आश्रम में व्यासदेव अपने पत्नी को भागवत कृष्ण कथा सुना रहे थे और वहां भी सेम सीन था, वो पत्नी भी उस दिन क्या हो रहे थे, जमाई जमाई ऐसे करते ना हम बेच में, बिल्कुल ऐसे होता, भी नींद आ रही है क्या करूं, मुंह खोल देते हैं। अभी उसने वहां मुंह खोल दिया, ये उड़ते हुए आकर सीधा उनके मुंह में प्रवेश कर गए, प्रवेश कर गए तो शिवजी तो देख ही रहे कहाँ गायब हो गए, पता नहीं चला। फिर वो लंबा चर्चा होता है, शिवजी चले जाते हैं, फिर व्यास देव के पुत्र के रूप में शुकदेव गोस्वामी क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, बल्कि 16 साल तक अंदर ही थे। कितने साल के हो गए थे अंदर? व्यास देव कह रहे थे बेटा बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो शुकदेव गोस्वामी, इसलिए शुकदेव गोस्वामी कोई साधारण नहीं है, आत्माराम मुनि है। आत्माराम का मतलब है कि जिसको सुख या आनंद प्राप्ति करने के लिए दूसरी वस्तु या विषय की आवश्यकता नहीं है, वो किसी पर निर्भर नहीं है आनंद के लिए। हम आनंद प्राप्ति के लिए हमेशा निर्भर है दूसरे व्यक्ति के ऊपर, वस्तु के ऊपर। तो शुकदेव गोस्वामी आत्म साक्षात्कार उन्होंने प्राप्त किए थे और वो कह रहे थे बाहर नहीं आऊंगा, माया है बाहर। बाहर क्या है? माया है, माया का प्रभाव बहुत है। कहते हैं मैं हूं ना, व्यास देव कहते मैं हूं, अरे बेटा बाहर आ जाओ, कहते आप भी तो माया से प्रभावित हो, नहीं आऊंगा। जो माया को कंट्रोल जिसने किया है, मायाधीश जो है, वो कहेंगे तो आऊंगा। तो उस समय भगवान कृष्ण द्वारका में थे, कहां थे? व्यास देव ने सोचा कृष्ण को ही बुला लेता हूं, तो कृष्ण वहां गए, व्यासदेव ने जब बुलाया तो भगवान, आप भागवत में पढ़ेंगे तो भगवान कृष्ण बुलाते हैं, शुका बाहर आ जाइए, शुकदेव गोस्वामी तैयार होंगे। और कृष्ण तो चले गए, शुकदेव गोस्वामी आए बाहर, बाहर आए तो आते ही दौड़ने लगे, दौड़ के घर में रुके नहीं, हाँ कहाँ चले गए, जंगल में दौड़ रहे थे, आते ही पिताजी ने देखा अरे बच्चा जन्म लेते ही भाग रहा है। तो व्यासदेव भी पहले स्कंद में आते हैं, व्यासदेव उनके पीछे भाग रहे हैं, व्यासदेव भागते भागते हाँ शुकदेव गोस्वामी आगे गए, हाँ एक सरोवर के किनारे जहां स्त्रियां स्नान कर रही थी, और वहां से शुकदेव गोस्वामी गए आगे जंगल में प्रवेश किया, और व्यासदेव वहां से गुजरे, वो स्त्रियों ने तुरंत अपने वस्त्र अपने शरीर में डाले। हाँ तो ये व्यासदेव सोचने लगे कि मेरा पुत्र पहले यहां से ही गया, तभी इन स्त्रियों ने अपने अंग ढके नहीं, लेकिन मैं जब गया तो आप उनने अपने शरीर ढक दिया, ऐसा क्यों? स्त्रियों ने कहा क्योंकि वो इतना उन्नत था कि उसको स्त्री और पुरुष के शरीर में कोई भेद नहीं था, इतनी शुद्ध और परमहंस स्थिति थी। हाँ तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी इतने उन्नत थे, और वास्तव में ऐसे लेवल का व्यक्ति ही कृष्ण का गुणगान करने का योग्य है या योग्यता रखता है, और कोई नहीं। हम तो अपनी शुद्धि के लिए वर्णन करते हैं। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी जब चले गए तो इनके पिता ने सोचा, व्यासदेव ने सोचा, अरे मैं किसको श्रीमद् भागवतम सिखाऊं जो सारे जगत को दे सकता है, तो उन्होंने यही व्यक्ति क्वालिफाइड है, लेकिन ये वापस कैसे आएगा घर? तो आपने दो शिष्यों को दो श्लोक सिखाए, एक श्लोक गुणों का वर्णन करता था और एक श्लोक भगवान के सौंदर्य का वर्णन करता था। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण योग करने कारण, हाँ भगवान के सौंदर्य का वर्णन करता था कि कृष्ण ने पीताम्बर धारण किया है, कान में कर्णिकार फूल है, हाँ बहुत सुंदर वस्त्र है, अलंकार है, कौस्तुभादि है। तो ये श्लोक एक शिष्य गा रहा था तो ये शुकदेव गोस्वामी आकर्षित हो गया ऐसे रूप से, ऐसा कौन व्यक्ति है, जब उनको पता चला अरे और उनके बारे में जानना है। हाँ और दूसरा श्लोक था कि भगवान जो विष देने के लिए आई थी पुतना, उसको भी अपनी माँ का स्थान देते हैं। ये दो श्लोक जब सुने तो शुकदेव गोस्वामी जंगल छोड़ के और भगवान के बारे में जानना चाह रहे थे कि ये दो श्लोक नहीं, मुझे और जानना है। तो आए व्यासदेव के पास, उनके चरणों में बैठे, और व्यासदेव ने उनको क्या सिखाया? श्रीमद् भागवतम सिखाया, और वही श्रीमद् भागवतम उन्होंने परीक्षित महाराज को प्रदान किया, और परीक्षित महाराज ने उसी श्रीमद् भागवतम को सुनकर भगवत प्राप्ति की। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा यदि कोई व्यक्ति इन पांचों में से किसी के प्रति आसक्त हो जाता है थोड़ा सा भी, तो उसको कृष्ण प्रेम तुरंत मिलेगा। एक है नाम संकीर्तन, दूसरा है भक्तों का संग, तीसरा है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, चौथा है अर्च विग्रह की प्रेम के साथ सेवा करना, और पांचवा है मथुरा धाम में जाकर निवास करना। हाँ इन पांचों का अल्प भी यदि कोई संग करता है, निश्चित उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उजागर हो जाएगा। हाँ ये फिक्स है, महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पे ये बात हाँ इलाहाबाद में कही थी। तो इसलिए हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली सोचना चाहिए जब भी हमें भगवान के बारे में सुनने का मौका मिलता है, क्योंकि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो इन कानों में कितना भी चिल्लाओ तो भी अंदर घुसने वाला नहीं है। कृष्णा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं कानों के माध्यम से, इसलिए भागवतम में कहा गया है प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, कान के छेद से भगवान हृदय में जाते हैं और हृदय में जाकर शुद्ध करके हृदय में निवास करते हैं। इसलिए परीक्षित महाराज ने सिद्धि प्राप्त कर दी केवल सुन के, और शुकदेव गोस्वामी ने सिद्धि प्राप्त कर दी केवल कीर्तन करके, भगवान के बारे में बोल बोल के। तो ये हमारे पास मौका है और ये प्रभुपाद की विशेष कृपा है कि उन्होंने ये हाँ चीजें हमें प्रदान की है। हाँ सुबह शाम जब भी समय मिलता है उसको हम सुने, और कैसे सुनना चाहिए? बिल्कुल तन्मयता के साथ, हाँ ध्यान देकर, आंखें और कान उत्कंठित होकर। कैसे सुनना चाहिए? उत्कंठित, ये कंठ कहाँ होना चाहिए? ऐसे ऊपर करके, ऐसे नीचे करके नहीं, घुसेगा नहीं ऐसे
बिल्कुल। जैसे चातक पक्षी, चातक पक्षी कहता है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरा पानी नहीं पीऊंगा, पानी पीऊंगा तो प्रथम दृष्टि का। वैसे ही हाँ, जो फर्स्ट क्लास का श्रोता है, मैं वो पढ़ने वाला था, श्रोताओं का वर्णन वो मैंने पढ़ा नहीं इसमें से। हाँ, चार प्रकार के फर्स्ट क्लास श्रोता है, चार प्रकार के नीचे क्लास के श्रोता है, आगे के कभी क्लास में चर्चा करेंगे। तो ऐसे चातक के भांति श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। जब आप सुनते हैं तो पूर्ण रूपेणा हाँ उस विषय को समझने का प्रयास हमें करना चाहिए, नहीं कि हम सुन भी रहे हैं और उसमें हमारा मन भाग रहा है अपने भौतिक कार्यों में। जैसे एक माता जी थे, एक स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे, क्या सॉलिड प्रवचन दे रहे थे, पूरे सारे मंत्र मुग्ध हो रहे थे, और एक माता जी आगे बैठी थी वो रोते जा रही है। ये स्वामी जी जो प्रवचन दे रहे थे, हाँ स्वामी जी जब प्रवचन दे रहे थे तो ऐसे हिल भी रहे थे, प्रवचन देते रहे थे, माता जी रो रहे थे। उन्होंने सोचा, अरे क्या मेरा प्रवचन है। एक श्रोता के आंखों में सीधा आंसुओं की धारा, हाँ मैं सक्सेस हो गया आज का दिन। तो वो प्रवचन के बाद पूछा, माता जी आप क्यों रो रही हो इतनी। तो कहती, क्या कहो स्वामी जी, हाँ मेरी जो बकरी थी ना वो कल गुम हो गई थी, और बकरी की ऐसी एक दाढ़े थे उस पर, आपकी भी क्या है आपके भी थोड़ी सी ऐसी दाढ़ी है और ऐसे ऐसे हिला देते हैं मुझे अपने बकरे की याद आ रही थी, पूरे प्रवचन में उसी की याद में रो रही थी। हाँ, तो हमें भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम अपने पूरे दिन या हफ्ते के जो चीजें हैं उसमें रममान रहे और वो फिर वो घुसता नहीं है, लगता है कि सुन रहा हूं या सुन रही हूं लेकिन वो उड़ता है, चला जाता है, जैसे तवे के ऊपर पानी डाल दो गरम, हाँ वो निकल जाता है। तो इसलिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि हमें भगवान के बारे में सुनना है और उचित विधि से, उचित व्यक्ति से सुनना है, उन्नत भक्तों से। तो क्या होगा कि हमारा जो चित्त है शुद्ध होगा और भगवान के प्रति आसक्ति जागृत हो सकती है। चाहे कोई कुछ भी बोले उससे इतना हमें नहीं, ये कुछ भी बोले मतलब आपकी निंदा करेगी, अरे कहाँ जा रहा है सुनने के लिए, हाँ वो सब चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए वहाँ ही, हाँ और भगवान के बारे में सुनने के लिए सदैव तत्पर या लालायित होना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद का यही गुण उनके आध्यात्मिक गुरु ने देखा था। प्रभुपाद कहते थे, मुझे मेरे जो गुरु जी बोलते थे कुछ समझ में नहीं आता था, हाँ क्योंकि ये जो दिव्य शब्द है चाहे समझ में आए या ना आए लेकिन एक चीज है, इस विषय वस्तु को बार बार सुनते हैं तो क्या होता है, समझ में आने लगता है, इसलिए बार बार सुनना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे, मुझे समझ में नहीं आता था लेकिन सुनना बहुत अच्छा लगता था, जिसके कारण मैं आज बोल भी पा रहा हूं। और ये सही है, जो अच्छे से सुनेगा वही अच्छे से भगवान का गुणगान कर सकता है, बोल सकता है भगवान के बारे में। और भगवान के बारे में सुनने का दूसरा विधि है प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं, मुझे जो भी बोलना था वो मैंने बोल दिया, किसमें बोल दिया, मेरे ग्रंथों में बोल दिया है, आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो हमें जब भी समय मिलता है प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और जब भी समय मिलता है भगवान के बारे में सुनना चाहिए। चाहे हम ऑफिस जा रहे हैं, कार में हैं, किचन में काम कर रहे हैं, आजकल तो हर मोबाइल में लेक्चर्स डाल के सुन सकते हो आप, प्रवचन सुनते रहो, कीर्तन सुनते रहो, सुनते सुनते कहाँ चले जाओगे, भगवत धाम, कहाँ चले जाओगे, भगवत धाम। तो ये सरल विधि है, इसको बहुत हल्का मत लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, किसी की कोई समीक्षा या प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। 9 बजे बहुत लेट हो गया, ठीक है, हाँ।
मुझे मेरा प्रश्न ये है कि रेगुलर हम सुनते हैं इस बात को कि निरंतर हमें करना चाहिए श्रवण कीर्तन, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अगर हमने एक घंटा रीडिंग हियरिंग कर, एक घंटा रीडिंग कर ली, एक घंटा हियरिंग कर ली, तो हम लोग तो इतना भी कर पाए तो काफी है, मैं भी सेटिस्फाई हो जाते हैं इसके ऐसा। अगर तो मुझे तो लगता नहीं कभी तो भी हम निरंतर तो हरिनाम नहीं कर पाए।
वैसे कुछ चीजें हमें फिक्स करनी चाहिए, और विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण है कि जो जप है वो सुबह करने का प्रयास करना चाहिए, और बाकी चीजें हमें फिक्स करनी चाहिए कि मुझे एक हफ्ते में इतने घंटे सुनना है, इतने घंटे रीडिंग करना है। कुछ विधि फिक्स करते हैं तो फिर धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से हमारा मन सत्व गुण में आता है, और फिर भगवान का स्मरण सरल हो जाता है। निरंतर हमें निरंतर क्यों नहीं होता, क्योंकि रजोगुण बहुत हावी है हमारे जीवन में, तमोगुण। इसलिए सत्वगुण की वृद्धि, और सत्वगुण की वृद्धि का मतलब है उस व्यक्ति के सारे कार्य नियमित होते हैं। हाँ, नियमित श्रवण, नियमित कीर्तन, उसी समय वो उठता है डेली, उसी समय वो कार्य करता है, ये सत्वगुण के लक्षण है। और जितना सत्वगुण हमारे जीवन में होगा उतना ही भगवान का स्मरण करना हमारे लिए सरल होगा, फिर हमारे लिए संभव है कीर्तनीय सदा हरे। और वो बहुत ऊंचा धरातल है कीर्तनीय सदा हरे। पहले तो जो नियम है नियमित वो होना चाहिए, तब वो निरंतर संभव है। ठीक है, हरे कृष्ण।